Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Dheeranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
शून्य नहीं है ये ध्वनि का अर्थ हिंदी में क्या दिया, शिव यानी शुद्ध स्वभाव परमात्मा ही रहता है, शून्य नहीं रहता है, यह अर्थ निपात से ध्वनित होता है। शून्य नहीं है ये किससे पता चलता है, निपात से, मैंने निपात शब्द का अर्थ समझ रहे हैं ना अभी, तो मैं निपात से पता चलता है शून्य नहीं है। तो ये निपात क्या है, तो निपात एव के लिए बता, शिव एव, एव निर्धारण हो गया, एव अनेक प्रकार से एव के अर्थ निराकरण करने के लिए आता है, कहीं जोड़ने के लिए आता है, कहीं हटाने के लिए आ जाता है, तो यहां जोड़ना हटाना नहीं है, यहां मात्र एव अवधारण के लिए है। और निपात क्या बला है, निपात संज्ञा होती है, अव्यय संज्ञा, निपात संज्ञा, ये सभी शब्द जो होते हैं, शब्दों का आप बोलते हैं ना, शब्दों के विभाग जब होते हैं, ये नाम का विभाग है, ये क्रियापद का विभाग है, इन विभागों में संज्ञा होती है। आप लोग नाम के संज्ञा अंग्रेजी में देख लीजिए तो कितने अनेक, 8, 9, 10 भाग नाउन की पढ़ते हैं, वर्ब की पढ़ते हैं, इसी प्रकार जो शब्द बनते हैं प्रत्यय और प्रकृति के माध्यम से शब्द की उत्पत्ति होती है। अभी हम लोग राम बोलते हैं तो राम बोलते हैं, अरे राम तो राम है, ये व्याकरणकार केवल राम बोलने पर चलेगा क्या, अरे रमो क्रीड़ायाम धातु है, मानी प्रकृति हो गई, रमो का रम बच गया, और फिर घई प्रत्यय हो गया, मानी प्रकृति और प्रत्यय मिलकर राम शब्द बना, हरी हरणे धातु है, उससे तीन प्रत्यय कर दिया और उसमें हरि बन गया, इसको बोलते हैं प्रकृति प्रत्यय से बना हुआ शब्द, इस शब्द को बोलते हैं प्रातिस्विक विधि के द्वारा बना हुआ शब्द, प्रातिस्विक विधि बोलते हैं। और एव च ये अर्थ आता है ना, एक एक के लिए अव्यय जो होते हैं उनके लिए निपात संज्ञा होती है, मानी सिद्ध प्रकृति प्रत्यय के बिना जो सिद्ध अर्थ का निर्देश होता है उसको निपात बोलते हैं। प्रकृति प्रत्यय के बिना जो प्रकृति का शुद्ध अर्थ है, माने सिद्ध अर्थ होता है, उसको बोलते हैं सिद्ध प्रक्रियायाः अर्थ निर्देशः निपात। मैंने यहां एव का अर्थ बताया, वो केवल निपात क्या है, नहीं तो बोले कि यहां निपात निपात आया हुआ है, निपात अर्थ न शून्य निपात अर्थ, निपात यहां पर जो एव बना हुआ है, एव आया हुआ है, वो निपात है। तो निपात का अर्थ निकल गया, केवल सिद्ध अर्थ है, प्रकृति प्रत्यय लगा के अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। चले आगे, केवल अविद्या विकल्प शून्य, केवल का अर्थ करते हैं जो केवल बोलने पर, केवल क्या केवल है, केवल मैंने मात्र, मात्र है, केवल है, तो भाष्यकार उसका अर्थ क्या करते हैं, अविद्या विकल्प शून्य, अविद्या विकल्प शून्य, ये जितना भी विकल्प होता है, द्वंद्व होता है, ये त्रिपुट आदि होती है, तो ये सब अविद्या के द्वारा विकल्पित होते हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञे परमाता प्रमाण प्रमेय, ये सब त्रिपुटियां होती है, ये सब विकल्प होते हैं, ये सब के सब वहां पर केवल बोलने पर रहित होता है, मतलब केवल का अर्थ हो गया अविद्या से बने हुए जितने भी विकल्प है, इन विकल्पों से शून्य। और वह कैसा है, उसको बोल रहे तद अक्षरम, तद उक्त स्वरूपम न अक्षरति इति अक्षरः नित्यम, जो कूटस्थ परमात्मा है उसके ऊपर जगत केवल प्रतीति मात्र भासता है, ऐसा जो परमात्मा है वो कैसा है, अक्षर है, अक्षर ब्रह्म बोलते हैं न अक्षरति इति अक्षर, अक्षर किसको बोलते हैं, ये जिसमें अपना विकार होते हैं, क्षरण हो रहे,
अंगम गलितम पलितम मुंडम बालस तावत क्रीड़ासक्त, ये सब लीजिए यहां से लेकर वहां तक जितनी भी अवस्थाएं, ये सब शरीरों की संसार की अवस्था है, द्वैत की अवस्था है। लेकिन उस परमात्मा की अक्षर है, उसमें कोई क्षरण नहीं है, इसलिए वो नित्य है। और खंडित और अभी खंडित अखंडित किसको लेकर बोल रहा है? खंडित ये भी तो होना है। नहीं नहीं, निपात की बात, निपात एव दिया है तो निर्धारण मतलब मात्र वही है, इसके लिए दिया। और खंडित अखंडित नहीं, राम शब्द बना, ये राम शब्द बना, ये प्रातिस्विक विधि से बना, ये बोलते हैं। और ये व च ऐसी जो निपात संज्ञा जिसकी होती है उसको बोलते हैं सिद्ध अर्थ है, सिद्ध अर्थ। निपात का अर्थ होता है सिद्ध अर्थ। और ये रमो हरि जितनी भी आपके शब्द, आपका जो भी नाम है प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ, हमें पता नहीं है, आपका जो भी नाम है वहां आप देख लीजिएगा डिक्शनरी में संस्कृत में, तो आपका क्या धातु है, क्या प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको मिलेगा। हमें पता नहीं है कि केवल हमारे मां बाप ने नाम रख दिया। प्रत्येक का नाम डिक्शनरी में देखिएगा तो कुछ ना कुछ धातु है और प्रत्यय लगा है। धातु को बोलते हैं प्रकृति और उसको आगे लगता है प्रत्यय। ये सब शब्द जितने भी शब्द है ऐसे बने नहीं है। अब हम लोग उच्चारण करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, नाम रख दिया बोलते हैं। लेकिन व्याकरण में और न्याय में बोलते हैं बाप है तो दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो। बाप है तो दिखाओ, नहीं तो श्राद्ध करो, बोलना नहीं, ये उनका आता है। अब हम लोग बोलते रहते हैं, हमारे नाम का कुछ भी पता नहीं है, चल रहा है। लेकिन जब शास्त्र में जाते हैं तो शास्त्र में लिखा हुआ ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारा है, ये देखो ये शब्द बना हुआ, ऐसा ऐसा बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रातिशिक विधि। और जो अव्यय है, अपि आदि है, एव आदि है, ये एक एक शब्द अर्थ है, उनके लिए कोई दूसरी प्रकृति नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, मैंने धातु और प्रत्यय लगा के अर्थ बना नहीं है। सिद्ध अर्थ का नाम है निपात। और हमारे जितने भी शब्द नाउन है ये निपात नहीं है, हमारा जो जो नाम है वो सब कैसा है, प्रातिस्विक विधि से बना हुआ है। और वह प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध अर्थ निर्देश निपात, इस प्रकार उसकी एक व्याख्या करते हैं। तो खंड और अखंड थोड़ा वहां जमता नहीं, पता नहीं चलता। तत् मूल में है ना, अभी तत् सवितु हो, सवितु के आगे तत् दिया, अक्षर के लिए तत् दिया, मतलब जो अक्षर में है वो तत् है, तत् का अर्थ करते हैं तत्पद लक्ष्यम, जो कूटस्थ है वह तत्पद का लक्ष्य है, जो अक्षर है, शिव है, केवल है, वह तत्पद का लक्ष्य है। ये बता, तेरी तत्पद का लक्ष्य है तो इस ये किससे पूजित है भाई, इसको कौन मानते हैं? मैंने बड़े बड़े मानते हैं, बड़े दिग्गज, सूर्य जगत चक्षु, ये पूरे के पूरे जगत का चक्षु कौन है? सूर्य, वही उनको नमस्कार करते हैं। हम लोग सूर्य के कारण तो स्थिति है हमारा, हम लोगों की जगत की स्थिति किसके कारण है? उसी कारण, यदि वो नहीं होता तो ना अनाज होता है ना कुछ नहीं होता है, सब कुछ उसके माध्यम से होता है। और वो भी उनसे कुछ लेते रहता है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। तब मैंने सवितु हु आदित्य मंडल अभिमानी नहा वरण्यम, वरण्य मनि संभजनीयम, जो कूटस्थ परमात्मा है, शिव है, केवल है, अक्षर है, तत्पद का लक्ष्य है, ये कैसा है? आदित्य मंडल के अभिमानी जो सविता देवता सूर्य देवता है उनके द्वारा पूजित है। मैंने हम लोग किस खेती की मूली, मैंने सामान्य बोले ना, और हम भी उनको पूजते हैं, अरे कौन तुम्हें पूजने के लिए बोला है? आजकल बोलते रहे ना कभी कभी, अरे इतना भगवान की हमने पूजा की किंतु हमें कुछ मिला नहीं, अरे तुम कहां हो? मैंने इतना बड़ा जो जगत का मालिक जिसके कारण जगत की स्थिति है वह उनको रात दिन भर पूजन करता रहता है। तो कहने का तात्पर्य संभजनीय, मैंने सूर्य भगवान से ये संभजनीय है। प्रज्ञा, अब उसको प्राप्त करना हो तो ज्ञान चाहिए, मैंने ऐसा जो सूर्य भगवान के द्वारा भी पूजित है, अक्षर है, तत्पद का लक्ष्य है, शिव ये है, उसको प्राप्त करना है,
उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा। प्रज्ञा मानी ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान उसी का ज्ञान चाहिए। बोलते ज्ञान कहां से आएगा? गुरु उपदेशात। तत्त्वम आदि वाक्य जाहा बुद्धि ही, मानी तद विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये प्रज्ञा वहां मिलेगी, मानी प्रज्ञा कहां मिलेगी? तो ले स्थान भी बताया प्रज्ञा, तो वहां के द्वारा गुरु के द्वारा वो प्रज्ञा आएगी। चकार ये वाक, यहां भी चकार का अर्थ ये उकार अर्थ मानी निश्चय के लिए, निपात के लिए, निश्चित के लिए, मानी उन्हीं से मिलेगी। और सामान्य ज्ञान कहीं पर भी मिलेगा, किसी भी गुरु से मिलेगा, लेकिन ये जो प्रज्ञा है सामान्य गुरुओं के पास मिलती नहीं है। तस्मात शुद्ध शुद्धत्व हेतु होटि, तस्मात शुद्धत्व हेतु हो, अर्थात शुद्धत्व हेतु शुद्धत्व के हेतु है। ये प्रज्ञा क्या है? शुद्धत्व हेतु हो, प्रज्ञा का विशेषण दे रहे हैं। ये बुद्धि कैसी है? शुद्धत्व का हेतु है, माने शुद्ध तत्व को प्राप्त करने में कारण है। अभी शुद्ध तत्व कौन था? वही नहीं, नहीं, प्रज्ञा कैसी है? प्रज्ञा उस शुद्ध तत्व को प्राप्त करने में हेतु है, कारण है उस शुद्ध तत्व की, तत्व का कारण है। कौन शुद्ध तत्व? जो कूटस्थ है, अक्षर है, तत्पद का लक्ष्य है, सविता के द्वारा, स्वयतु के द्वारा वरण्य है, भजनीय है, उसको प्राप्त कराने में ये कारण है। तस्मा शुद्ध हेतु हो, हेतु मैंने कारण बताया। और ये प्रज्ञा कहां से आ गई? प्रसृता, एक फैलाई गई है ये प्रज्ञा, कहां से तो आगे बताएंगे, लेकिन ये प्रसृता, जैसे आकाशवाणी प्रसारित होती है क्या? आकाशवाणी फैलती है, इसी प्रकार ये प्रसृता माने नित्य विवेकादि मत्सु सन्यासीषु व्याप्ता पूर्णत्व आकारेण, माने ये प्रज्ञा कहां कहां फैली हुई है और उसकी व्याप्ति कहां कितनी है, आकाशवाणी कहां फैलती है? जितना उसका एरिया है वो इतने है, इसलिए तो प्रत्येक राज्य के अलग अलग स्टेशन चलते रहते हैं, केंद्र के अलग इकट्ठा सर्वत्र प्रसारित होते हैं। तो इस प्रकार इस ये जो प्रज्ञा है, ब्रह्म विद्या है, गुरु के द्वारा उपदेशित, और ये शुद्ध उस परमात्मा को प्राप्त करने में कारण है, हेतु है, साधन है, ये कहां फैली हुई है? तो बोलते हैं नित्य विवेकादि मत्सु सन्यासीषु, अर्थात विवेकादि बुद्धि से संपन्न, साधन चतुष्टयादि सर्व संपन्न ऐसे सन्यासियों के लक्षण से विशिष्ट जो महापुरुष रहते हैं उनमें ये व्याप्त है। अर्थात कैसी व्याप्त है? पूर्णत्वा कारण, पूर्ण जैसे कपड़े में धागा कहां है? सब जगह है, पूर्ण कपड़े में धागा व्याप्त है। मिट्टी घड़े में एक कोने में और एक कोने में नहीं है क्या? सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार ये जो प्रज्ञा है उन महापुरुषों में सर्वत्र फैली हुई है। ये पुरानी भी है कि नहीं है क्या ये प्रज्ञा? नहीं नहीं, पुरानी है। तो पुरानी है ये आत्मविद्या, पुरानी है, अर्थात पुरानी का अर्थ है पुरापि नव इति पुराणम, पुरा अपि नव्यो, कभी ये बासी नहीं होती। क्या बोलते हैं? कभी ये ताजा ही ताजा रहता है, पुराना नहीं होता है। यहां पुरापि नव एव पुराणम, कभी ये अध्यात्म विद्या की विशेषण चल रहे हैं। ज्ञानेश्वर जी महाराज गीता के मतलब पहले अध्याय में ज्ञानेश्वरी में शारदा ने अपना देवी का वर्णन करते हैं और वो भी माता अंबा का। हे देवी नित्य नूतन स्वरूप तुझे जैसे, मुझे आगे पीछे शब्द हो रहे हैं मैं अभी तुरंत नहीं आ रहे ना, वहां बोले हे देवी, भगवान शिव जी बोल रहे हैं अंबा माता को, हे देवी तेरा स्वरूप जैसा नित्य नूतन है, इसी प्रकार इस आत्मविद्या का स्वरूप नित्य नूतन है। मैंने ये किसकी उपमा, विद्या को उपमा दे रहे हैं, किसकी? अंबा की। जैसे तू नित्य नूतन है इस प्रकार ये विद्या नित्य नूतन है। नित्य नूतन इसका मतलब कुरापी न अभी भी न कभी भी देखा जाए, ये विद्या का स्वरूप नित्य नूतन ये है। और ये कहां से आ गई? ब्रह्मानम आरभ्य परंपरया प्राप्ता अनादि सिद्धः, माने उस परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त हो गई है। नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महंतं गोविंद योगेन्द्र मताश शिष्यं श्रीशंकराचार्य मताश पद्म पादं च हस्ता मलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिक कारमन्यात् अस्मद् गुरुन संततमानतोस्मि। यहां तक आ गई। नारायणं पद्म भवं वशिष्ठं शक्तिं, ये पूरी की पूरी परंपरा, माने विद्या कोई बीच से आई नहीं, जिसको प्राप्त करने के लिए जाना है उन्हीं के द्वारा ये आई है, दूसरों के द्वारा कहने पर थोड़ी आएगी। अपना स्वरूप उन्होंने ही बताया, नारायण ने स्वयं अपना स्वरूप बताया और वहां से लेकर आज तक अपने पास ये आई आ रही, गुरु परंपरा से आ रही है, इसलिए यहां बताया। आगे ब्रह्म के अनुपम एवं इंद्रियातीत स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म अनुपम माने उपमा रहित, उपमा उसी को दी जाती है कि दूसरा कोई होता है तो रामचंद्र बोल दिया, अयोध्या के राम हैं और उनको एक विशेषण दिया चंद्र बोल दिया, कृष्ण को चंद्र बोल दिया, क्या चंद्र है क्या कृष्ण, रामचंद्र है क्या, तो क्या बोल दिया चंद्र की। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम सादृशत्वम, उपमा दी जाती है। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्वम, चंद्र से भिन्न होता हुआ चंद्रगत अनेक सादृश्य, चंद्र क्या है, चंद्र तो नहीं है लेकिन चंद्र के अंदर जो कुछ गुण है वे गुण है। चंद्र के अंदर क्या गुण है, शीतलता प्रदान करना। तो इसी प्रकार इनका जो भी पूजन करेगा जो भी भजन करेगा तो उनके लिए क्या दे सकते हैं, आनंद प्रदान। त्रिविध तापों से सभी तो जल रहे, पूरा का पूरा संसार कितने तापों से जल रहा है, त्रिविध तापों से जल रहा है, तो त्रिविध ताप से संतप्त हो रहे तो उनके लिए शीतलता चाहिए तो किससे मिलेगी, उस चंद्र से नहीं मिलेगी। त्रिविध ताप ये केवल सूर्य के ताप को हटाने के लिए चंद्र है, लेकिन त्रिविध ताप को हटाने वाला चंद्र कृष्ण चंद्र और रामचंद्र, माने ये रामचंद्र कृष्ण, ये उपमा की मैं बता, माने इस प्रकार यहां जो ब्रह्म है कूटस्थ ब्रह्म शिव है वह अनुपम है, उसको कोई उपमा दे नहीं सकते और इंद्रियातीत उस स्वरूप का वर्णन चल रहा है। कूटस्थस्य ब्रह्मणः ऊर्ध्वादिषु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्वं अद्वितीयत्वात् केनापि अतुलितत्वं अतुलित्व कालादि दिगादि अनवचिन्न एषो रूपत्वं च। विशेषण देते हैं कूटस्थस्य ब्रह्मणः, जो कूटस्थ ब्रह्म है, पूर्व में पूरा का पूरा वर्णन किया गया उसका, उसको वो कैसे हैं, ऊर्ध्वादिषु दिक्षु केनापि अपरिग्राह्यत्व, कोई भी दिशाएं ऊर्ध्वादिषु, ऊर्ध्व मैंने ऊपर की, आदो आदो की कितने हैं, दसों दिशा, आठ दिशा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अग्नेय वायु निरुत्य ईशान नई आठ और नीचे के, मैंने सब मिलकर दस दिशाएं हो गई। मैं किसी भी दिशा में ये दिशा के द्वारा ग्रहित नहीं हो सकता है, अभी हम लोग दिशा के माध्यम से ग्रहित हो सकते हैं, उस दिशा के इस तरफ है इससे इस, बोले आप इनके पूर्व में बैठे हैं, इनके उत्तर में आप बैठे हैं, पश्चिम में बैठे हैं, तो कोई भी संसार की वस्तु है नाम रूप वाली ये दिशा से ग्रस्त है, दिशा से ग्रहित है, लेकिन यह कूटस्थ किसी भी दिशा से ग्रहित नहीं है। मतलब संसारिक सर्व सभी वस्तु किसी ना किसी दिशा के माध्यम से पकड़ में आते हैं। इतना है कि आजकल आप लोग देखिएगा किसी को पकड़ना हो तो मोबाइल के ऊपर पकड़ते हैं, कहां है, कितने रेंज है, इस दिशा में है, वो तुरंत पकड़ बता देते हैं, एक मोबाइल बता सकते हैं।
और हम लोग तो देखते हैं आप इनके उत्तर में दिशा में बैठे, इसके दिशा में बैठे हैं, माने नाम रूपात्मक जितना भी द्वैत है ये दिशाओं से पकड़ में आता है, काल से पकड़ में आता है, वस्तु से पकड़ में आता है, लेकिन यह किसी से पकड़ में आने वाला, किसी दिशा से पकड़ में आने वाला नहीं है। अद्वितीयत्वात्, अद्वितीय होने के कारण, माने दूसरा कोई भी नहीं होने के कारण, अतुलितत्व, माने उसकी तुलना नहीं है, द्वितीय होगा तब तुलित तुलना होती है ना, अद्वितीयत्व न किसी भी तुलना का तुलना नहीं कर सकते हैं। एक वस्तु को तुलना करने के लिए दूसरी वस्तु की आवश्यकता होती है, इसके अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं है, इसलिए इसको किसी के माध्यम से तुलना उपमा नहीं दे सकते। इसके लिए काल दिगादि अनवचिन्नम यशो रूपत्वम, काल दिग दिशा किसी से भी ये अनवचिन्न यश है। हम लोग बड़े हैं तो क्या, अरे बोलते हैं कि चलो प्रेमपुरी में आप लोग बड़े हैं, आप लोगों का यश इतना ही ना, क्या दूसरे स्टेज पर है क्या? अब हमें बोले हाँ सब स्टेज पर देवानंद जाता है, हमारा यश उतना ही है, दूसरी जगह जाएगा क्या? हम लोगों का सीमित है यश आदि, लेकिन उसका वैसा नहीं है। श्रुति का अर्थ कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।